ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान।
राजस्थान राजापाल जोन, जयपुर राजापाल जोन के कनेक्शन के।
अच्छा, तो राजस्थान राजा पार्क, और आज का विषय क्या है? बेफिक्र बादशाह मैंने राजा है ना, तो राजा बना। आप बेफिक्र बादशाह हैं या बनना है? जो तो कहते हम हैं वो अपना दायां हाथ उठाएं, जो कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बाकियों को तो बनना ही है, ठीक है। अच्छा, बादशाह की क्या निशानी होती है? आपने कभी वो जो ताश खेलते हैं वो देखा है? ताश है, प्लेइंग कार्ड। माताओं ने देखी है कभी ताश? अच्छा, जिन्होंने देखी है हाथ उठाओ। सबने देखी है लगभग। तो मुझे ताश खेलना नहीं आता था, तो ब्रह्मा बाबा ने एक दिन दोपहर के भोजन के बाद मुझे बुलाया, और बाबा के और भी दो तीन बच्चे बैठे, दो बच्चे बैठे हुए थे, और एक उसमें बाबा का लौकिक बच्चा था, नारायण जिनको कहते हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा। तो ताश रखी थी, बाबा ने मेरे से पूछा, तुमको ताश खेलना आता है? मैंने कहा नहीं। बोले कि तुम तो ऑफिसर हो, क्लब में ही जाते अपनी कंपनी की। मैंने कहा मैं तो ब्रह्मा कुमार हूँ, साल में एक बार क्लब जाता हूँ, क्योंकि मैं अकाउंट्स का व्यक्ति हूँ, तो वहाँ के स्टॉक चेक करने होते हैं, वैसे तो मैं जाता नहीं, काहे को जाऊँगा। तो बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो। जब बाबा किसी को बुद्धू कहता था वो बड़ा खुश होता था। मान लो यहाँ बाबा हो और आप सबको कहे तुम बुद्धू हो, आपको खुशी होगी या नाराज हो गए? खुशी होगी। अच्छा, तो फिर बाबा ने मुझे थोड़ा सा ताश खेलना सिखाया, आसान सा ताश था। हम रोज भोजन के बाद बाबा के कमरे के बाहर चक्कर लगाते थे, कि बाबा की ब्राह्मणी होती थी लच्छू भैर, वो आके कहती थी आओ, तो हम बाबा से ताश खेलते थे। अब क्या हुआ कि बाबा अपने लौकिक बच्चे नारायण को, आपने पांडव भवन में बाबा की गद्दी देखी है, कमरा देखा है, वहां एक गद्दी बिछी हुई है, तो मुझे तो अपने साथ बिठाते थे और नारायण को सामने बिठाते, एक और था उसको भी सामने बिठाते थे। तो मैं बड़ा खुश होता था कि देखो बाबा अपने लौकिक बच्चे को सामने बिठाता और मुझे साथ बिठाता। एक दिन बाबा ने नहीं बुलाया, तो हम चक्कर लगा रहा था मैं बाबा के कमरे, क्योंकि हमें बड़ी खुशी मिलती थी, आदत पड़ गई थी, तो बाबा ही ताश जीत जो खेलते उसमें बाबा ही जीतते थे हमेशा, और हमको फिर हम हार जाते थे। तो आपको बाबा से हारने में खुशी होगी कि जीतने में? हारने में। तो फिर बाबा हमको कहते थे ऐसे करो, तो हम ऐसे करते थे हारने के बाद, उसमें भी हमें खुशी होती थी। तो एक दिन बाबा ने नहीं बुलाया, तो मैं चक्कर लगा रहा था, बाबा की ब्राह्मणी बाहर आई लच्छू, मैंने कहा बाबा ने बुलाया नहीं। बोली मैं पूछ के आती हूँ। तो पूछने गई, बोली बाबा ने कहा अपने साथियों को लेके आ जाओ। हम चले गए तो उस दिन बाबा अपनी गद्दी पे थोड़ा हल्का सा लेटे हुए थे, जैसे पत्र लिखने के चित्र में है ना, बाबा पत्र लिख रहा, ऊपर छोटा सा कंबल लिया हुआ था। तो बाबा ने कहा बच्चे खेलना शुरू किया, तो पहली बार ही बाबा हार गया, बाजी हार गया। अब हम सोच में पड़ गए कि हम तो बाबा से वैसे करवा नहीं सकते जैसे बाबा हमसे करवाता था। तो हमें ख्याल आया कि बाबा कैसे हार गया। तो हमने लच्छू बहन से पूछा कि बाबा थोड़ा लेटा हुआ है और क्या बात है, बाबा की तबीयत ठीक है? तो उसने कहा बाबा को 102 बुखार है, लेकिन तुम लोगों ने कहा तो बाबा ने प्यार से तुमको बुला दिया। तो ऐसा प्यारा था बाबा। तो जो ताश होती है उसमें 10 तक तो होते सीधे सीधे, उसके बाद पिक्चर होते हैं। तो किसका पिक्चर होता उसमें? बादशाह, बेगम और गुलाम, है ना? अच्छा, तो आज का जो हमारा विषय है वो इसी में कवर हो जाता है। बेगम किसको कहते हैं? मुसलमान लोग अपनी युगल को बेगम कहते हैं। तो बेगम का क्या मतलब हुआ? बेफिकर, है ना? तो वो तो है ही बेगम नहीं। और बाबा कभी कभी बेगमपुर का बादशाह भी कहते हैं, है ना? तो बेगम मतलब बेफिकर। क्यों? के कहते हैं कि राज राजा का, हुक्म रानी का, ऐसे कहा जाता है। तो जो स्त्री होती है उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति बनना है, कितनी मेहनत लगती है, वोट लो, ये करो, वो करो। और जो उसकी पत्नी होती है उसको क्या करना पड़ता? कुछ भी नहीं। तो उसको फर्स्ट लेडी बोलते हैं, कि उसको सारी पावर होती है लेकिन मेहनत नहीं करे, संबंध से ही वो बन जाती है। विदेश में जाएगा प्रेसिडेंट, उसका प्रोग्राम राजनीतिक बनेगा, ये करो ये करो, उससे मिलो। और उसकी युगल का अलग बनेगा, इसको यहाँ शेयर करवाने ले जाना है, यहाँ दुकान शॉपिंग कराने ले जाना है। इसलिए कहते बेगम कि तुमने घर में बैठना है, घर बैठे सब मिलेगा। तो अगर किसी को कर्मों की गति का ज्ञान लेना हो तो बेगम से ले सकता है ना। वैसे तो यहाँ भी बाबा की कन्याएं हैं, कन्याएं थोड़ा सा ज्ञान लेकर बाबा की गद्दी पे बैठ के मुरली सुनाना शुरू कर देती हैं, है? दीदियां बन जाती हैं। और जो भाई होते हैं, है? वो दादा नहीं बनते। तो कभी कभी हंसते हैं कि भाई भाई दादा क्यों नहीं बनते, भाई भी मुरली सुनाते हैं कई जगह, लेकिन लिफ्ट होता है किसी किसी को। कुमारों को अपनी तरह का लिफ्ट होता है कि भाई हार्ड वर्क करना, कोई यज्ञ कोई आश्रम हो जिसमें कुमारी ना हो तो सोचो दरिया कौन उठाएगा। अब प्रोग्राम होगा तो हार्ड वर्कर भी चाहिए ना, कुर्सियां कौन सेट करेगा। तो इसलिए जिसको जो लिफ्ट है उसको अपनी लिफ्ट को देखना। तो बाबा कहता है अगर ऐसे श्रेष्ठ कुमारों का ग्रुप बन जाए, गवर्नमेंट को दिखाएं, तो गवर्नमेंट भी प्रभावित हो जाए। अच्छा, अब ये जो है गुलाम, तो गुलाम भी बहुत सजा सुजा होता है, ऐसे नहीं, उसकी भी बढ़िया ड्रेस होती है, है? तो आपने कभी गुलाम की कहानी सुनी है? हाँ? अच्छा, एक गांव का व्यक्ति था, तो उसने कहा मैंने राजा देखना है। तो उन्होंने कहा भी राजा तो राजधानी में होता है, राजधानी में जाओ। तो मान लो आपकी राजधानी जयपुर है, जब राजाओं का राज होता था, मान सिंह, स्वाय मान सिंह वगैरह वगैरह। तो आ गया तो शहर में आके उसने पूछा राजा कहाँ रहते हैं, बोला राजमहल में। वहां चला गया तो उसको किसी ने बता रखा था कि राजा बहुत सजा सजाया होता है। तो बाहर महल के बाहर पर जो दरबान खड़ा रहता है वो भी सजा सजाया होता है। उसने जाते ही कहा महाराज की जय दरबान को, तो वो बोला मैं महाराज नहीं हूँ, महाराज अंदर है। अंदर गया तो उनका कोई और कर्मचारी था, वो भी सजा सजाया था, हर एक को ड्रेस होती है वहां। तो राष्ट्रपति भवन में जो माचिस होती है उसके ऊपर भी तीन मूर्ति बना होता है, स्पेशल चीज होती है। तो उसने देखा कि ये तो उससे बढ़िया सजा हुआ, यही राजा होगा। बोला महाराज की जय। फिर उसने कहा कि मैं महाराज नहीं हूँ, महाराज अंदर है। ऐसे पांच छह व्यक्ति उसको मिले, एक से एक बढ़िया सजा हुआ। तो जैसे गुलाम भी सजा होता है ताश में, तो सबको महाराज की जय कहता गया। हर एक कहे महाराज अंदर है, महाराज अंदर है। अब वो जाके महाराज के कक्ष में पहुंच गया, तो वहां महाराज थे। उसने कहा ही नहीं महाराज की जय, उसने कहा ये भी पता नहीं कौन होगा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी तरह धोखा खाता है। तो जो व्यक्ति 10 के ऊपर चला जाए वो फोटो में तो आ जाता है, लेकिन अगर उसने बादशाह और बेगम ना देखे हो तो किसको महाराज कहेगा, गुलाम को, है ना, ये सजा हुआ, लेकिन नाम उसका क्या है, गुलाम। तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं अपने बच्चों को जन्म लेते ही, वो तो बड़े होकर के बनते हैं, राजा जो है वो जन्म से बन जाता है, तो मैं अपने बच्चों को बादशाही जो है वो भी बेफिक्र की बादशाही जन्म से ही दे देता हूँ। अच्छा आप ये बताओ कि बेफिक्र बादशाह सतयुग में होते हैं या संगम पर, इकट्ठे बोलते पता नहीं लग। जो कहते हैं सतयुग में होते हैं हाथ उठाओ, कोई नहीं उठा रहा। अच्छा बताओ सतयुग में बादशाहों को कोई फिक्र होता है? सतयुग में, सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक बादशाहों को कोई फिक्र होता है? नहीं होता, तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं उठाया है? कि रामचंद्र जी के हाथ में बहुत सारा धनुष है, इसलिए ये फिक्र ना हो तो धनुष क्यों रखे, और धनुष भी राजगद्दी पर बैठ के रखा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड का भी भरोसा नहीं कि कोई क्या पता है, अपने पास ही रख के बैठे। तो उनको फिक्र होता है रामचंद्र जी को? नहीं होता। तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्या सतयुग त्रेता में बादशाह बेफिक्र होते हैं कि नहीं होते? अब दोबारा सोच के उठाओ। हाँ देखो माताओं का समझ में आ गया, देखो अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये बताओ संगम पर बेफिक्र बादशाह होते कि नहीं होते? जो कहते हैं होते हैं वो हाथ उठाओ, डबल नहीं उठाना, वहां भी उठा दो वहां भी। अच्छा भाइयों ने कईयों ने उठाया ही नहीं, फिर से उठाना जरा देखा जाए क्यों उठा रहे, कोई तो बाया हाथ उठा रहे, इसका मतलब। अच्छा ठीक है, बाबा कहते हैं ना हाथ उठाने वाले तीन तरह के होते हैं, आप जानते हैं ना। अच्छा पूछो राम सीता बनना है तो कोई हाथ उठाएगा? हालांकि राम सीता मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके बल्कि 12 जन्म होते हैं, प्रजा भी जाती है, फिर भी उसमें हाथ नहीं उठाते। अच्छा लक्ष्मी नारायण बनना है, आप देखो जो जिन्होंने लक्ष्मी नारायण बनना है वो हाथ उठाओ। अच्छा 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 आप लक्ष्मी बनेंगे? आप नारायण बनेंगे? अच्छा अब देखो आज वैसे मेरा हाथ फ्रोजन है इसलिए मैंने हाथ हिलाया नहीं, लेकिन कहो लक्ष्मी नारायण बनना है हाथ उठाओ तो क्या करते हैं? इतना सा उठाते हैं, समझा? फिर दूसरे को देखे उसने उठाया हुआ, अगर नहीं उठाया तो उठा लेते। मान लो बाबा कहते हैं टीवी उधर करो सब बच्चों का फोटो लेते हैं जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, तो फिर क्या करते हैं? बाबा कहता ऊंचा हाथ उठाओ, तो ऐसे उठा के नीचे कर लेते फटाफट, अच्छा, क्योंकि दिल नहीं मान रहा ऐसे। फिर बाबा कहते नहीं नहीं खड़ा रखो हाथ, फोटो हो रहा है, तो हाथ उठाएंगे फिर ऐसे ऐसे करेगा, है ना। तो इसलिए क्या समझा जाए, तो इसको कहते हैं देखा देखी उठाना। तो बाबा कहते ठीक है, अगर देखा देखी उठाना है तो जब बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को देखो या फॉलो फादर या सीफर, तो हाथ उठाने में तो देखा देखी कर लेते हैं, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने में देखा देखी नहीं करते, क्यों? वो भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा अब आप देखिए, जब बेफिक्र कहा जाता है तो बेफिक्र की जरूरत वहां पड़ती है जहां फिक्र का मौका हो, चांस हो। अगर आपको फिक्र का चांस ही नहीं तो बेफिक्र का कोई मतलब निकलता नहीं निकलता। मान लो आपको बर्फ चाहिए, बहुत गर्मी है, राजस्थान में कई जगह बहुत गर्मी पड़ती है, अच्छा तो बर्फ की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर में पड़ेगी या हिमालय की चोटी पर पड़ेगी? अगर आपको हिमालय की चोटी पर कोई बर्फ दे तो आप क्या करेंगे? अरे भाई बर्फ दे रहा है, कुछ गर्म चीज दे, है ना। जैसे किसी हलवाई को जाके दिवाली के दिन मिठाई के टोकरी दे ले, गिफ्ट ले ले, तो हलवाई क्या करेगा, हंसेगा कि नहीं हंसेगा? वाले को कोई जाके दिवाली के दिन फल की टोकरी दे दे, ले भाई तेरे लिए लाया हूं, हंसेगा कि नहीं हंसेगा? तो इसलिए बेफिक्र की आवश्यकता जब पड़ती है जब फिक्र का संभावना हो। इसलिए बाबा जब बेफिक्र बादशाह कहता है तो संगम युग के लिए कहता है। दूसरी बात, जितनी चीजें बाबा कहते हैं, जितनी उड़ती कला, मीठे बनो, प्यारे बनो, जो भी कहते हैं, ज्ञानी बनो, वो केवल संगम ना सतयुग में होता है ना कलयुग में होता है। इसलिए जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी उसकी अनुभूतियां हैं, वो सारे संगम से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि संगम पर वो होता है जो कहीं और नहीं होता। अच्छा संगम युग का एक शब्द में बताओ, अगर हमने कहना हो संगम युग, तो क्या एक शब्द हम साथ में रखें जिससे पता है हर वक्त हम संगम युग पर रहे? हाँ? जोर से बोलो, मैं थोड़ा बहरा हूं, जोर से बोलो। हाँ एक जना बोलो, संगम युग को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? हाँ? दो दो शब्द नहीं, एक शब्द। ऐसे तो कह देंगे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी संगम युग, एक शब्द। हाँ? बाप दादा मिला, तो कितने शब्द हो गए? अच्छा नहीं, मेरा बाबा में भी दो हैं, आत्मा। आत्मा कहना मैंने संगम युग, कुछ ठीक लगता है, है? एक शब्द बोलो दो। बाबा कहता है संगम युग में अलौकिक शब्द है, अलौकिक। यहां हर चीज अलौकिक, चाहे आप बैठे लौकिक में, अब यहां आप बैठे हैं बाबा के घर में, तो जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो कौन सा है, लौकिक है या अलौकिक है? आपके जितने अनुभव हैं वो लौकिक हैं या अलौकिक हैं? ब्राह्मण कब होता, ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो ना देवता है ना कलयुगी है, तो अलौकिक हो गया ना। तो इसलिए अब अगर हमने बेफिक्र बादशाह बनना है फिक्र की दुनिया में, तो फिक्र कहाँ होता है? देखो फिक्र कहाँ होता है? जब आप लौकिक में आएंगे तो किसी ना किसी प्रकार का चिंता, भय, फिक्र, परेशानी हो जाएगी। अब जब आप अलौकिक बन जाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा। आपको अलौकिक को चिंता होती है? नहीं। अब फर्क क्या हुआ कि हम हैं, जैसे कलयुग में संगम है ना, ये जो संगम चल रहा है कलयुग में है, तो जू ही आप गलती से सीता ने जैसे लाइन क्रॉस की है, वो लाइन क्या थी? नाम उसका है लक्ष्मण रेखा, ये मन के लक्ष्य की रेखा, या समझो मर्यादा की लकीर। तो जब उसने उसको जरा सा क्रॉस किया तो क्या हुआ? रावण जो था वो उसको कह रहा था भिक्षा दे दे, तो लाइन के अंदर खड़ी होके दे रही थी, ठीक है। उसने क्या किया? उसको पता है जब तक ये लाइन के अंदर है तो मेरा कुछ चाल नहीं चलेगी, जरा सा बाहर गई तो मैं इसको पकड़ लूंगा। तो उसने बड़ी चतुराई करके करके जरा और बाहर आके दो करके ले गया। इसी प्रकार से जब तक हम अलौकिक में रहते हैं तो आपको फिक्र हो ही नहीं सकता। अलौकिक का रूप क्या होता है? अलौकिक का, अलौकिक मैंने फरिश्ता, आप हैं इस बॉडी में, लेकिन इस बॉडी में जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, पहले ब्रह्मा बाबा की बॉडी में शिव बाबा आते थे और अब एक और रथ में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आते हैं, तो जब वो उस बॉडी में होते हैं तो दुख सुख स्वाद वगैरह किसको होता है? ब्रह्मा शिव बाबा भोग खाता है? भोग खाता है तो क्या करता है? फिर हम भोग लगाते हैं तो क्या करता है? हम कहते हैं वासना लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब तक हम अलौकिक बॉडी में हैं और हमको बाबा अलौकिक बॉडी में शरीर में रहने का अभ्यास कराता है। बाबा साकार में क्यों आते थे? मान लो बाबा गुलजार दादी के रथ में आते थे, तो गुलजार दादी का रथ मेल का था या फीमेल का था? तो हम देखते तो फीमेल के रथ को थे, लेकिन क्या हम फीमेल रथ को देखते थे या बाबा को देखते थे? उसमें कोई सोचता था कि बाबा ब्रह्मा बाबा फीमेल के रथ में कैसे आगे होगा? तो हमें पता था कि रथ है जो इसके अंदर आया हुआ है, जिससे हमने मिलना है, और जो हमें भी देख रहा है वो अलग है। अभ्यास कराया ना बाबा ने अलौकिक का। अच्छा, सपने तो सबको आते होंगे, आप में ऐसा कोई है? चलो ये पूछते हैं, क्या ऐसा कोई है जिसको सपना आता हो कभी ना कभी? है तो हाथ उठाओ, सपना आता हो? सपना है? अच्छा, जब बाबा कहते तुमको सपने में भी था कि हम जाके ब्राह्मण और देवता बन जाएंगे, है ना? तो सपना में क्या होता है आपके साथ? शरीर तो पड़ा है, शरीर तो पड़ा है, लौकिक शरीर, स्थूल शरीर पड़ा है। आपको अनुभव नहीं होता क्या? सपने में आप भाग रहे हैं, पीछे पुलिस वाला भाग रहा है या सांप भाग रहा है, जो भी होता है, कभी ऊपर से गिरते हैं, कभी कभी आंख खुल जाती है, तो फिर कहते शुक्र है सपना ही था, है ना? तो अब सपने में पूरी अनुभूति होती कि नहीं होती? अच्छा, जैसे आपको सपने में अनुभूति होती है वैसे क्लास में भी होती है ना? आप क्लास में बैठते हैं, सारा टाइम बैठे रहते हैं यहाँ क्या? शरीर तो पड़ा है, کیا خیال ہے؟ یا سیر سور کر کے آتے ہیں؟ ہاں؟ اور جس کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا اس کی بھی خاص نشانی ہوتی ہے. جیسے ریلوے کے ٹکٹ چیک کرنے والے کوئی ویکتی کو خاص بلاتے, تو ادھر آ ٹکٹ دکھا, اس کے پاس نہیں ہوتا, ان کو کیسے پتا لگتا ہے نا؟ کہ اس کی وائبریشن آ جاتی ہے, تو اب نارمل ہو جائے گا, وہ کوشش کرے گا کہ اس کو پتا نہ لگے, اور جب وہ سوچ رہا ہے اس کو پتا نہ لگے, اس کو پتا لگ جاتا ہے. اسی پرکار سے کلاس کے اندر جو زیادہ سیر کرتے ہیں انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا کہ جو بولے گا سامنے اسٹیج سے ایسے ایسے کرتے رہو, تاکہ وہ سمجھے کہ میں سن رہا ہوں. سمجھا؟ اور ہوگا وہ غائب, پوچھو گے کیا سنا تو ادھر ادھر دیکھے گا. تو اس لیے آپ کو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو انبھو ہوتا ہے کہ نہیں, بیٹھ شریر یہاں بیٹھا ہے اور آپ اپنے انتا واہک شریر سے کہیں غائب ہو جاتے ہو, سپنے میں بھی غائب ہو جاتے ہو. تو اگر اسی پر وہ تو ہوتا ہے, ویسے من جہاں لے گیا آپ کو, جہاں آپ کو من لے گیا وہاں پہنچ گیا. لیکن اگر ہم اسی کلا کو, غائب ہونے کی کلا کو اور پرکٹ ہونے کی کلا کو, جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو چیز پرکٹ نہیں ہے اس کو پرکٹ کر دیتا ہے, پھر اس کو غائب کر دیتا ہے. یہاں سے گیند دکھائے گا, پیچھے کی سیٹ والے کو کہے گا تیرے پاس گیند پہنچ گیا, وہ کہے گا ہاں. تو کیا آپ مان لو یہ سیٹیں خالی ہیں, ہم آپ کو کہیں بیٹھے رہو شریر سے یہاں, لیکن سوکشم شریر سے آپ یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, آپ کو کوئی کشٹ ہوتا ہے؟ آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ ہاں, کئی بار لوگ فوٹو کھچواتے ہیں, اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں, سبھا میں بھی بیٹھے ہیں, ہوتا ہے نا. اس لیے اس کو کہتے ہیں الوکک. جیسے جب کسی کو تکلیف ہو وہ غائب ہو جائے, آپ کو کوئی شکتی دے دے, وردان دے دے کہ کوئی بات نہیں, چنتا نہیں کرو, کانفرنس ہال میں کالا سانپ آیا ہوا ہے اور آپ کی سیٹوں کے نیچے گھوم رہا ہے, آپ چنتا نہیں کرو, آپ تو بے فکر بادشاہ ہو نا, آپ چنتا کی کیا ضرورت ہے. اور سچ مچ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ جوتے چھوڑ کر, کاپی چھوڑ کر باہر بھاگو گے کہ نہیں بھاگو کہ نہیں بھاگو گے؟ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی یہ موقع دے دے کہ نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں, تم اپنی انگلی دبا رہا تم غائب ہو جاؤ گے, سانپ کچھ نہیں کرے گا. تو اس لیے ایک فکر مند بادشاہ کی کہانی بھی سناتے ہیں. ایک بادشاہ تھا, سارا دن سیر کرتا رہا, اپنے راج پرجا کو دیکھتا رہا, شکار کرنے چلا گیا, تو رات کو تھکا تھکایا ہے اور اپنے دربان کو بولا میں بہت تھک گیا ہوں, سیدھا میں نے سونا ہے, بس بھوجن بھاجن کچھ نہیں. اس نے کہا حضور اپنے آپ کا سونے کا کمرہ ہے, وہاں چلیے. تو چلا, جب گیٹ پر پہنچا تو دربان نے کہا حضور آج ایک سانپ دیکھا گیا تھا اس کمرے میں, ہم نے بہت ڈھونڈا ملا نہیں, پر آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کو کیا کہے گا سانپ, آپ تو ساری پرجا, آپ جا کے سو جائیے, اب تھکے ہوئے نا سو جائیے. اب راجا کیا کرے گا, کیا کرے گا, اس کو نیند آئے گی, ہے وہ راجا لیکن ادھر ادھر اسے سانپ ہی سانپ دیکھیں گے, پتا نہیں کہاں سانپ نہ آ جائے. تو اب وہ بے فکر رہا یا فکر مند ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی طرح سے آتما کے اندر, من کے اندر بہت شکتی ہے, لیکن ہم اگر سوئے ہوئے رہیں گے, جو کہتے ہیں جاگت ہے سو پاوت ہے, سووت ہے سو کووت ہے, تو شکتی. ایک مریض ہے, بہت بیمار ہے, آپ آئی سی یو جانتے ہیں نا, آئی سی یو کیا ہوتا ہے, ماتاؤں کو پتا آئی سی یو کیا ہوتا, ہاسپیٹل کا وہ کمرہ جس کے اندر بہت بہت ہی جو نازک مریض ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے کہ بالکل مرنے جیسا ہو، مرے یا بچے، اور اس کے اندر رشتے دار کو بھی نہیں جانے دیتے، اور ہر وقت وہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر رہتا ہے، مشینیں لگی رہتی ہیں، اس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، اس کا خون کیسے دوڑ. اچھا تو آئی سی یو میں مریض بڑا ہل بھی نہیں سکتا، اس کو کہنا ایسے اس کے پران نکلتے ہیں. اچھا اور آئی سی یو بھی ہسپتال کے دوسری منزل پر ہے. اچھا مان لو اس مریض کو کوئی کہہ دے کہ تیری کھاٹ کے نیچے ایک بم پڑا اور وہ 15 سیکنڈ میں پھٹنے والا ہے، وہ مریض تو ہل نہیں سکتا بےچارا، تو کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کو بھی دھکا دے کے بعد چلے جائے گا. اب وہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو آتی ہے نا طاقت. اچھا کسی کی 10 کروڑ کی لاٹری نکل آئے اور وہ کہیں جی لاٹری کا دفتر 13ویں منزل پر ہے، لفٹ خراب ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، آپ نہ کل آ جانا، وہ کیا کرے گا؟ ہاں کیا کرے گا؟ کہے گا نہیں جی میں سیڑھی سے چڑھ جاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے بابا کہتا ہے تمہارے اندر شکتیاں ساری ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے، جیسے ہم نے کہیں نہیں جانا ہوتا تو ہم کہتے کوشش کریں گے، جانا ہوتا تو کہیں گے ضرور آئیں گے، ہے نا؟ تو وہ بھی کہتا ہے انوائٹ کرنے والا بھی کوشش نہیں کرنا، ضرور آ. تو ہم کئی طرح کے شبد یوز کرتے ہیں نا، پتہ لگ جاتا اس سے کہ کیا کر رہا ہے. اسی پرکار سے بابا کہتا ہے آپ الوکک رہو، تو سارے سنگم یوگ کے سکھ آپ کے. اب بادشاہ کو تو سکھ ہی ہوتا ہے، اور بے فکر بادشاہ جو سنگم یوگ کے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ سکھ سے اوپر کوئی چیز ہے؟ سکھ تو دیوتاؤں کو بھی ہوتا ہے. ہاں اتی اندریہ سکھ ہوتا ہے، جس کو آنند کہتے ہیں. اچھا آتما کے تین جو گن بتائے جاتے ہیں کیا ہے؟ ایک تو ست ہے، ایک چیت ہے، اور تیسرا آنند سروپ. اور جو آنند ہوتا ہے وہ دکھ سکھ سے اوپر ہوتا ہے، شانتی سے بھی اوپر ہوتا ہے، کیونکہ اور چیزوں کا الٹا ہوتا ہے، سکھ کا الٹا، دکھ، پریم کا الٹا، نفرت، شانتی کا الٹا، آنند کا الٹا ہوتا ہی نہیں. اب ہم وہ ہیں، اور ہم آنند سروپ ہوتے ہوئے سکھ تو چھوڑو شانتی مانگتے پھرتے ہیں، جو اس سے بھی گھٹیا چیز ہے، جو شانتی کبھی واسطو میں ہوتی ہی نہیں. بابا کہتا ہے شانتی شانتی دھام میں ہوتی، شانتی میں نے زیرو، دکھ میں نے نہ مائنس، سکھ میں نے پلس، اور شانتی میں نے زیرو. تو جو اتی اندریہ سکھ والا آنند سروپ وہ شانتی ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب وہ الوکک نہیں ہے. تب بابا کہتا ہے کہ آپ کو بے فکر بادشاہ تو میں نے پہلے دن ہی بنا دیا، جنم لیتے ہی بنا دیا، الوکک شبد یاد رکھو. اب بتاؤ اب آپ الوکک میں کتنا رہتے ہیں، لوکک میں کتنا رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اتنی بات ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی، ہر ایک کو کبھی کبھی تو کم سے کم، پھر اس سے زیادہ کسی کو بہت زیادہ یوگ لگاتے ہیں، بھٹی میں آتے ہیں، تپسیا کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا انبھو ہوتا ہے کہ میں شریر نہیں ہوں، میں بالکل ہلکا ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو بس تو بابا کہتا ہے ہلکا، میں نے انگلش میں ہلکے کو کیا کہتے ہیں؟ لائٹ. اب جو ہلکا ہے، من سے ہلکا ہے، تن اس کو فیل ہی نہیں ہوتا. بابا ہمیشہ کہتا ہے کہ جو ڈانس کرتے ہیں اس میں جب وہ ڈانس کرنے لگ جاتے تو ان کو یہ نہیں رہتا ہم کتنے موٹے ہیں یا کتنے وزن والے ہیں، ڈانس کرتے ہیں خوشی میں ہلکے ہو جاتے ہیں. اچھا موٹر کار कोई मोटर कार खड़ी है उसको धक्का लगाना हो कितने लोग चाहिए? तीन चार तो चाहिए। जैसे हमारा ही शरीर है, आत्मा निकल जाए तो उठाने वाले कितने चाहिए? चार भी पक्का नहीं उठाते, थोड़ी थोड़ी देर बाद दूसरे को कहते तू कंधा लगा दे, हम भारी हो जाते हैं। हैं हम वही, लेकिन वो हवा निकल गई तो भारी हो गए। ट्रक के टायर की हवा निकल जाए तो धक्का लगा के दिखाओ। तो अगर हवा भरी हुई है तो दो आदमी भी ट्रक को धक्का लगा लेते हैं, और अगर इंजन स्टार्ट कर दो किसी भी गाड़ी का, मान लो कार का, एक व्यक्ति भी उसको चला धक्का लगा सकता, सिर्फ इंजन स्टार्ट हो गया। अब आप देखिए यही हाल हमारा है, हम देह भान में है तो भारी है। अच्छा, भय के कारण जैसे मैंने बताया हम हल्के हो जाते हैं, मजबूरी से सांप पीछे आ जाए तो कैसे भागते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे नहीं। एक अंग्रेज था, इंडिया में आया तो उसने कहा मैंने गांव देखना। तो सरकार ने कुछ गांव ऐसे बनाए होते हैं शहरों के पास, सजे सजाए अच्छे, वो फॉरेनर को दिखा देते ये हमारे गांव है। उसने कहा जी मैंने असली गांव देखना है, सरकारी गांव नहीं देखना। तो उन्होंने कहा वो तो जरा दूर है। कहता कोई बात नहीं। तो एक व्यक्ति उसको असली गांव में ले गया। अच्छा, अब आप जानते हैं असली गांव में क्या होता है, गाय के गोबर की थापियां दीवार पे चीनी होती है। वो बेचारा अंग्रेज कहे गाय ऐसे कहा ऐसे चढ़ गई दीवार पर, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं ना वो बेचारे, कर रहा था। जिलेबी खिलाई, बोला इसमें चीनी कहाँ से गई अंदर। अच्छा, तो करते करते ना वो लेट हो गया थोड़ा, और उसको प्लेन पकड़ना था, गाड़ी पकड़नी थी। तो बोला ओहो, मैं तो 10-15 मिनट लेट हो गया, वापस जाने का कोई छोटा रास्ता नहीं शॉर्टकट? तो उसने कहा तो गांव है, एक ही रास्ता होता है, या तो पकड़ंडी है। तो बोला फिर मैं कैसे पहुंचूंगा, चिंता में आ गया। तो एक लड़का खड़ा था, उसने कहा वो जो पेड़ के नीचे कुत्ता है ना, उसको पत्थर मार दो तो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना? आप समझ गए? तो अब तो कैसे पहुंचे, कैसे बकर से भी पहले पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को मौके पे यूज करो। अगर सुबह अमृत वेले आपकी आंख नहीं खुलती या आलस से आता है, तो बाबा ने कह रखा है आपकी शक्तियों के दो दुश्मन हैं, एक तो आलस से है ना, सब कुछ है। बाबा ने कहा अमृत वेले मेरे भंडारे खुले हैं, कोई ताला भी नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, मैं भर दूंगा अपने आप तुमको, खाली अमृत वेले आ जाओ। तो सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है योग लगाने में, उठने में, अमृत वेले है? माया ऐसे बताएगी जैसे आपके सारे शरीर की हड्डियां तोड़ तोड़ के रख दी है, आप कहेंगे हिला ही नहीं जाता। अच्छा, फिर बुद्धि चलेगी, बुद्धि कहेगी सारा दिन खराब हो जाएगा, हाँ अभी रेस्ट कर ले, नहीं तो तेरा सारा दिन ऐसे ही जाएगा। अच्छा, तो सुला देगी। अच्छा, बाबा ने यही शर्त रखी हुई है जानबूझ के, है ना? नहीं तो आप सोचो, माताओं बहनों की ब्रह्मा कुमारी संस्था है, आज दुनिया में कितने खराब लोग हैं, तो बाबा ने कैसे बचाया हुआ है? कोई स्टूडेंट आएगा, एक दिन उसको कोर्स कराएंगे, दूसरे दिन देखेंगे ठीक आदमी नहीं है, कहेंगे भाई सुबह आना 7 बजे, वो आएगा ही नहीं, छुट्टी। तो इसलिए बाबा ने तरीके रखे, हमें भी रखा हुआ, अमृत वेले उठ के बैठ जाओ मैं भर दूंगा। अमृत वेले ही ऐसे प्राण निकल जाएंगे जैसे शरीर में जान ही नहीं। और देखो जब अमृत वेला पूरा होगा तो इतने एक्टिव हो जाएंगे जैसे किचन में कॉकरोच होता ना, फटाफट चलता, अब ताकत कहां से आ गई? तो मतलब आलस ने हमको लूट लिया, फिर हम कहते हैं आज का अमृत वेला तो गया, चलो एक दिन गया ना। अब बाबा कहते हैं ये तो कलप कलप जाएगा, है ना? कई लोग कहते हैं जी ड्रामा फिक्स है तो हम ड्रामा चेंज कैसे करें? आप बिल्कुल सोने वाले हैं कि भाई थक चलो कोई बात नहीं, रात को 2 बजे तक नेचुरल प्रोग्राम देखते रहे। उन्होंने कहा भी बंद कर दो, सुबह उठना नहीं दिया, हम उठ जाएंगे, नेचुरल प्रोग्राम तो देखते रहे। सुबह उठ भी गए क्योंकि आदत है उठने की, फिर घड़ी देखी, अरे मैं तो 2 बजे सोया था, मैं थका हूं। अच्छा है ना, तो मन को थका दिया। अच्छा, अब बाबा कहता है कि कल्प एक बार ही नहीं, अगर आपको उस वक्त ज्ञान आ जाए याद, अरे ये एक टाइम का नुकसान नहीं, ये तो कल्प कल्प का नुकसान है। आपने पास फिर ऑनर की मुरली पढ़ी होगी, सुनी होगी। बाबा कहते हर कर्म जो आपका हो इतना बढ़िया हो कि आपका दिल करे इसको रिपीट करूं, वंस मोर करूं, ऐसा ना रिकॉर्ड में भर दो जो जी करे काहे को किया, तो अगले कल वही सीन फिर आएगा। तो अगर आप उस वक्त चुस्त होके अमृत वेले चले जाते हो तो आपने अपना ड्रामा चेंज किया कि नहीं किया? ड्रामा अनुसार तो आप सोने वाले थे, आपने ये पॉइंट यूज किया कि अरे रिपीट होना है, तो आपने आगे का चेंज कर लिया। इसलिए बाबा ऐसे ही थोड़ी ज्ञान देता है ड्रामा रिपीट का कि इसको उल्टा उठा लेते हैं। होना होगा हो। भैया कल क्लास में आओगे? होगा तो आ जाएंगे। वाह, ड्रामा पीछे का होता है या आगे का होता है, है? तो बाबा कहते हैं इसलिए आप गौर से सोचो कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, और शक्तियां किस लिए हैं, ताकत किस लिए होती है? फिकर को दूर करने के लिए। मान लो आप कहीं रेलवे ट्रेन में गए, वो कहता जी टिकट तो है नहीं, डबल पैसे दो तो मैं आपको एक सीट दे देता हूँ। आपके पास डबल पैसे हैं, फटाफट दे देते हैं, ले भाई डबल ले ले, सीट मिल गई। किसी भी जगह आपको कोई डर लगाता है तो बाबा कहते हैं तुम तो दुनिया को भय से मुक्त करते हो, निर्भय हो। सबसे बड़ा आज की दुनिया में चिंता किस चीज की है? डर। एक होता मरना, एक होता मरने का डर, तो दोनों में से ज्यादा दुख कौन देता है? हाँ? कोई आपके पीछे पिस्टल लेके खड़ा हो जाए कि भाई मैंने चलानी है, हाँ? तो आपका क्या हाल होगा? अभी चली, अभी चली, अभी चली, हैं? तो आपका दिल ऐसे हो जाएगा, कह भी अच्छा चला दे तो अब मेरी जान छोड़, है ना? तो इसलिए भय मृत्यु से भी ज्यादा, मृत्यु का भय दुख देता। तो आज की दुनिया में क्या है? भय फैला हुआ, किसी को कोरोना का भय, किसी को किसी चीज का भय। अच्छा, बाबा के बच्चों को भय हो सकता है? है तो सही, जब ऐसी नौबत आती तो क्या कहते हैं? बाबा कहता है संगम युग का शरीर बहुत वैल्यूएबल है। अब देखो, हैं? वैसे वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन जब मृत्यु का टाइम आ जाए, संगम युग का शरीर बहुत वैल्यूएबल। क्लास के टाइम सैर करने चले जाएंगे, क्यों भाई? संगम का शरीर बहुत वैल्यूएबल। अच्छा, अंगूर सेब खाने का दिल करेगा, संगम का शरीर बहुत वैल्यूएबल है। वाह, है सारा बॉडी कॉन्शियस, लेकिन तरीका बुद्धि जो है ना, वो ऐसा आपको घुमाएगी, बात ना पूछो। अच्छा, आप बाबा के आज से प्रतिज्ञा करो, तो कहेंगे, बुद्धि कहेगी ना कर, ना कर, तूने पहले भी करी थी, कुछ हुआ? काहे को प्रतिज्ञा करता? अच्छा, तो बाबा कहते इस तरह से वो घुमा देती है। तब बाबा कहता कि ये जो बेफिक्र है, फिक्र से दूर शक्तियां करती हैं। कभी आप बिल्कुल ठंडे ठार हैं, उस वक्त आपको चाहिए कौन सी शक्ति? ज्वालामुखी। कभी आप बहुत गर्म हैं, आपको ठंडा होना है तो शीतला चाहिए, तो उल्टी है ना शक्तियां। कभी आपको सहन करना पड़ता है, कभी आपको सामना करना पड़ता है। आपके पास शक्तियां हैं, लेकिन सहन करने की जगह सामना शुरू कर दिया, घर वालों से, सेंटर वालों से भी सामना शुरू कर दिया। दुनिया में सामना करना पड़े तो भीगी बिल्ली बन के भाग के घर आ गए, है ना? कि माताएं होती हैं, बच्चा लड़के आता है, अपने बच्चे को पीटना शुरू कर देती हैं, तू क्यों लड़ने गया था? क्योंकि दम नहीं है उसके सामना करने का। एक तो शक्तियां हैं और उसको हम प्रकट नहीं करते, मुसीबत में करते हैं, मोहब्बत में नहीं करते। तो बाबा कहते हैं मोहब्बत में करो, और फिर उनको आदत डालो। आजकल बाबा क्या कह रहा है, स्वरूप बनो, शक्तियों को यूज करो। अगर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, वो जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो आपकी शक्तियां हैं, आप उनको यूज नहीं करोगे तो उनको आदत पड़ जाएगी, आप बुलाएंगे वो ना कर देंगे या देर से आएंगे या कुछ करेंगे, अनमना होके करेंगे। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने हमने एक तो गुण दिए हैं, तो गुणवान व्यक्ति को वैसिक सहयोग मिलता है ना। प्रेम एक ऐसा चुंबक है जो आपको सहयोग दिलाए। अगर कोई ना किसी प्रकार के मन में घृणा है, अंदर है, ऊपर से मीठे हैं, अंदर से नकली हैं, तो बाबा कहते हो चल चलेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम आएगी। अच्छा प्रॉब्लम भी आ गई तो आपको गुण ऐसा ठंडा पानी है जो आपको समुन्द्र में अंदर कोई आग लगाए तो लगती है। आप गुणों से भरपूर हैं, आपको क्रोध करा लाएगा नहीं। अच्छा अगर कम हो गया तो फिर शक्तियां आपकी मदद करेंगे, भाई आग लगी बुझा तो दो। तो इतने बाबा कहते हैं मैंने आपको ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये तीन चीजें दे रखी हैं। और इससे चाहे आपका शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, कुछ भी हो निकल सकता है। शर्त यह है कि मौके पर यूज हो और आपको यूज करने का अभ्यास हो। नहीं तो क्या होगा, कई गुलाम अपने बादशाह को कैद में डाल के खुद राज करते हैं बादशाह के नाम पर। तो फिर ऐसा ही होगा, आपका मान लो खाने पीने की शक्ति है, आराम है, आलस है, अलबेला पानी बहुत खतरनाक है, देख लिया सारे ऐसे हैं, उनमें से तो मैं ठीक हूँ ना, मैं राजस्थान में तो ठीक हूँ। बाबा कहता तुम्हारा नंबर राजस्थान से लगना है या दुनिया से लगना है, कि स्कूल में फर्स्ट आता हो, कॉलेज में चला जाए तो कॉलेज में तो अन्य स्कूलों के बच्चे भी आएंगे, उसमें वो गिना जाएगा। तो बाबा कहता बेहद की दृष्टि भी रखो, कुएं के मेंढक की तरह, यानी कि मैं तो ठीक हूँ, इन सब से मैं अच्छा हूँ, ये भी खतरा है। तो इसलिए लास्ट बात ये है, बाबा ने कह रखा है सदा, हर शब्द के साथ सदा लगाओ। अब जैसे एक रस स्थिति है, एक रस स्थिति है ना, ये हमारा एक गुण है, एक रस स्थिति। सतयुग में एक रस रहते हैं या अप डाउन होते हैं, है ना। अच्छा अब एक रस स्थिति कैसे बनेगी, अगर हम जैसी अवस्थिति है उसके अनुसार चेंज होने को सीख जाएंगे। जैसे पानी है, पानी को जिस तरह के बर्तन में डालो वैसा ही हो जाएगा, गिलास में डालो, कटोरी में डालो, बाल्टी में डालो। अगर हम सख्त हैं, किसी लोहे की चीज को आप गिलास में डालो वो गड़वी में नहीं डलेगी। इसलिए पहले तो मोल्डिंग पावर है, और वो भी इजी। तो जो व्यक्ति इजी सहज स्वभाव का होगा, सरल होगा, उसमें ये गुण होगा, अकड़ेगा नहीं। कहते कहा जाता है मुर्दा अकड़ा हुआ होता, और जो ही आत्मा निकल जाए तो अकड़ जाता है। तो बाबा कहते इसलिए निर्माण बनो। तो निर्माण व्यक्ति जो है उसके लोग अपोजिशन नहीं करते, वो झुक जाता है, अपना काम चलाता है। और दूसरा होता है तो मैं थोड़ा बहुत तो अपना रखना चाहिए ना, मैंने ही सहन करना है क्या है? मुझे ही कहा गया कि इन सब पे शुभ भावना रखो, ये व्यक्ति शुभ भावना रखने योग्य है, देखो तो सही। दादियों को भी कहते, तो बाबा कहता है मैंने तुमको ये नहीं सिखाया, तुम उसके लिए शुभ भावना क्यों रख रहे हो, इसलिए कि तुमने देवता बनना। सवाल ये है अगर मैं नीचे वाले के साथ नीचा हो जाऊंगा, अवगुणी के साथ अवगुणी व्यवहार करूंगा, ईंट मारेगा मैं पत्थर मारूंगा, तो मैं देवता तो बन चुका। तो मुझे इसलिए करना है कि मुझे देवता बनना। तो देवता का गुण क्या होता है, अवगुण नहीं ना धारण करना। तो इसलिए अपनी खातिर मैं अपने कल्याण के लिए ये करता हूँ। दूसरे कहते भी इस पर रहम ही नहीं आता, इस पे तरस खाना, कौन तरस खाएगा इस पे। बाबा कहता देखो जिस पे तुम कह रहे हो तरस खाना, वो अपने वश में है। मान लो कोई क्रोध कर रहा है, कोई मैं कर रहा है, तो अपने वश में तो नहीं है, वो तो माया के वश में है। तो जो व्यक्ति अपने वश में ही नहीं है तो उसको आप तरस खाएंगे या घृणा करेंगे। मैं लास्ट में एक कहानी सुना देता हूं। एक बारी ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक व्यक्ति जयपुर से चढ़ा, तो उस डिब्बे में एक और व्यक्ति बैठा था और उसके तीन बच्चे भी थे। अच्छा, अब वो आदमी चुपचाप बैठा था जिसके बच्चे थे, और उसके बच्चे शरारत कर रहे थे। जो ही ये बैठा, उन्होंने जाकर उसकी जेब से पेन निकाल लिया। वो फिर भी बैठा रहा उनका पिताजी, थोड़ी देर में उसकी ऐनक उतारने लगे, फिर भी वो पिताजी चुपचाप बैठा रहा। तो आखिर उसने सोचा, इसने शरारती बच्चे मेरा बैग खोल रहे हैं तो ये क्यों नहीं बोलता। तो उसने आखिर कहा, भाई साहब देखो, आपके बच्चे इतनी शरारत कर रहे हैं, मेरे को तंग कर रहे हैं। तो कहता जी, आज ना 4 बजे इनकी माता की मृत्यु हो गई है। अच्छा, इनको तो अभी पता नहीं बेचारों को, मैं अब मुझे इनको संभालना पड़ेगा, मैं इस सोच में हूँ, तो मैं इनको कुछ नहीं कह रहा था। अब जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा था उसको बड़ा तरस आया, अरे इनकी तो बेचारों की माता की मृत्यु हो गई है, अब पिता देखो ऐसे चुपचाप बैठा, इसलिए नहीं बैठा कि वो तो खोया हुआ है। तो उसको हमदर्दी हो गई बजाय उसके शिकायत करने के। तो अगर हम भी देखें कि हम कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी परिस्थिति के कारण डिस्टर्ब है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब बिहेवियर करेगा। अच्छा व्यक्ति डिस्टर्ब बिहेवियर क्यों करेगा? तो हम उसकी समझ जाएं, उसकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए हम उससे घृणा ना करें, उसको शिकायत उससे बल्कि तरस करें। तो बाबा कहते, सारी दुनिया के ऊपर तरस कौन करेगा? बाबा करेगा, उसके बच्चे करेंगे, औरों को तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमको बाबा ने इस दुनिया में, कैसी भी दुनिया हो, बेफिक्र रहने का आर्ट सिखाया हुआ है। हम आत्मा अभिमानी हैं, हम भविष्य को भी जानते हैं। अगर कोई परिस्थिति आई है तो कल पहले भी आई थी, चली गई थी, अब भी चली जाएगी। 1000 पॉइंट बाबा ने हमको दे रखे हैं बेफिक्र बादशाह बनने के, सिर्फ मौके के ऊपर उस पॉइंट का स्विच ऑन कर ले। ओम शांति।
गर्व की जय, ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में भी बता ले, दिल भी बता ले, राहों में भर जाएंगे तेरी उजाले, तेरी उजाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे दे स्वाहा तू सारा, अंबर के सारे तारे हाथ में लागे, हाथ में सजागे, मन के सरोवर तू कमल खिला ले, कमल खिला ले, जीवन की नैया कर दे प्रभु